क्योंकि मेरी बीवी मुझसे नहीं डरती। बीवियां तो किसी की भी नहीं डरती, बल्कि पतियों को डरा कर रखती हैं। संकट जी हंसते हुए बोले तो अयांश भी मुस्कुरा दिया। तभी वहां आरवी आ गई। क्या बातें हो रही हैं? दोनों ने आरवी की तरफ देखा। आरवी दोनों की ओर देखते हुए बोली, मुझे भी बताइए, चाचा ससुर और दामाद के बीच क्या बातें चल रही हैं? संकट जी मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं बेटा, वो बस। अयांश बोल पड़ा, तुम्हें हर बात बतानी जरूरी तो नहीं वाइफी? ये सुनकर आरवी की भौंहें चढ़ गईं। क्यों नहीं बता सकते? ऐसी भी क्या बात है जो हमें नहीं बता सकते? अयांश, नहीं बता सकते नहीं बताते, हमारी मर्जी। ये सुनकर आरवी अयांश को घूरते हुए संकट जी की तरफ देखती है तो वो मुस्कुराते हुए कंधे उचका देते हैं। ये देखकर आरवी का मुंह बन गया। बहुत बुरे हैं आप। संकट जी, कौन? मैं? आरवी, आप नहीं चाचू। ये अयांश, मैं? हाँ आप। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी, मत बताइए, बाय। गुस्से से पैर पटकते हुए आरवी वहां से चली गई। संकट जी उसे जाते देख बोले, रूठ गई? अयांश मुस्कुराते हुए बोला, मना लूंगा। इतना कहकर अयांश बाहर चला गया और संकट जी हंस पड़े, ये बच्चे भी कमाल करते हैं। आरवी गणेश पूजन की रस्म के लिए रेडी हो रही थी। शादी की पहली रस्म कहो या शादी की रस्में शुरू होने से पहले गणपति बप्पा की पूजा, जो कि जरूरी होती है। पहला शादी का निमंत्रण बप्पा को ही दिया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि सब मंगल हो, कोई विघ्न न आए। मेहरा सदन में ही आज पूजा होने जा रही थी। अयांश ने सिर्फ शादी के लिए ही नहीं बल्कि सारी रस्में, रिवाजें, पूजा पाठ मेहरा सदन में हो सकते हैं इसकी भी परमिशन दे दी थी। फिर क्या था, आज आरवी का ही नहीं बल्कि पूरे मेहरा सदन का मंदिर की भांति सज चुका था। पंडित जी भी आ रहे थे और सब पूजा के लिए रेडी हो रहे थे। अभी ने ऑरेंज कुर्ता पजामा पहना तो वर्तिका ने ऑरेंज साड़ी, व्हाइट ब्लाउज, मैचिंग सी ज्वेलरी, खुले बालों पर गजरा। वैसे कोई थीम नहीं थी पूजा के लिए, बाकी सबने अपनी अपनी पसंद के कपड़े पहन लिए थे, पर स्पेशल लोग, आई मीन जिनकी शादी होने वाली थी, उन्होंने अपनी खुशी से अपनी पसंद से थोड़ा सेम कॉम्बिनेशन सेट कर लिया था। आरवी ने भी ऑरेंज व्हाइट पहना, व्हाइट लहंगा, ऑरेंज दुपट्टा, मैचिंग ज्वेलरी, बालों का मैसी बन, उस पर गजरा। बहुत प्यारी लग रही थी आज आरवी। आईने के सामने खड़ी अपना दुपट्टा सेट कर रही थी कि तभी अयांश आ गया। रूम में जैसे ही उसने कदम रखा, नजर आरवी पर चली गई जो कंधे पर दुपट्टा ठीक कर रही थी, पर उसने अयांश पर ध्यान नहीं दिया। अयांश मुस्कुराते हुए आरवी की तरफ चला आया और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। आईने से आरवी को ऊपर से नीचे तक देखा तो मुस्कुराहट और बढ़ गई और दिल की भी धड़कनें बढ़ गईं। अयांश मन ही मन खुद से बोला, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? किसी दिन ये लड़की तुम्हारी जान ले लेगी अयांश मेहरा, आए दिन अपना दीवाना बना देती है। तभी आरवी उसकी तरफ मुड़ गई, उसे सामने देखकर चौंक उठी। आप कब आए? अयांश उसके दुपट्टे की ओर इशारा करते हुए बोला, जब तुम अपने दुपट्टे के साथ उलझी हुई थी। ये सुनकर आरवी ने ओके कहा और बेड की तरफ जाने लगी। अयांश ने कलाई पकड़ रोक लिया और सामने आकर आरवी की कमर पर अपने दोनों हाथ टिकाते हुए बोला, आज पूछोगी नहीं कैसी लग रही हूँ? जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं या मूड नहीं है, जो आप ठीक समझे। मूड नहीं लग रहा, वही सही, बना दूं मूड? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है कि मैं कैसे लग रही हूँ, मुझे पता है अच्छी लग रही हूँ मैं, हमेशा की तरह बहुत अच्छी, क्योंकि मैं अच्छी हूँ। आरवी बोल रही थी कि अयांश बोल पड़ा, अगर मैं बताना चाहूँ तो तुम कैसी लग रही हूँ? ये सुनकर आरवी की नजरें एक पल को उस पर ठहर गईं, पर दूसरे ही पल आरवी ने नजरें हटा ली। नजरें ही नहीं, अयांश के हाथ भी अपनी कमर से हटा दिए। बट मैं नहीं चाहती, टाइम नहीं है मेरे पास, हटिए। इतना कहकर वो फिर जाने को हुई। अयांश ने उसको पकड़कर आईने की तरफ घुमा दिया और खुद उसे पीछे से हक कर अपना चेहरा आरवी के कंधे पर टिकाकर खड़ा हो गया। आरवी ने आईने से ही अयांश की तरफ देखा, क्या है? आरवी ने क्या है बोला तो अयांश बोलने को हुआ कि वो खुद ही बोल पड़ी, मत बताइए, वैसे भी आप हर बात मुझे बताएं जरूरी तो नहीं, राइट? अयांश को समझने में देर न लगी कि आरवी ने एक तरह से उसको ताना मारा है, पर अयांश मुस्कुरा दिया। आरवी अयांश की मुस्कुराहट देखकर चिढ़ गई और अयांश से खुद को छुड़ाकर वहां से चली गई और जाते जाते वो अयांश बोल गई, बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे। अयांश तिरछा मुस्कुरा दिया। आरवी रूम के बाहर आई और वहां से जाते जाते रूम के दरवाजे की ओर देखते हुए बड़बड़ाई, नाराज हूँ आपसे, बहुत नाराज, मनाओगे तब भी नहीं मानूंगी, देख लेना, मुझे मनाते मनाते आज आपको नानी याद आने वाली है मिस्टर मेहरा। अयांश आईने के सामने खड़ा अपने बालों में हाथों को घुमाते मुस्कुरा रहा था। तभी वो अपना कोट ठीक करते हुए एटीट्यूड वाले लहजे में बोला, नाराज तुम मुझसे रह नहीं पाओगी वाइफी, और देखना मुझे तुम्हें मनाना भी नहीं पड़ेगा, तुम खुद ही मान जाओगी। आज जो अयांश मेहरा करने वाला है उससे तुम बहुत खुश होने वाली हो, जाओगी फिर मुझसे दूर जाने की बजाय दौड़ी मेरे पास आओगी। सब नीचे हॉल में मौजूद थे जहाँ मंदिर के सामने आज गणेश पूजन होने वाला था। सब पूजा के लिए वहां आ गए। दिनकर जी, शांति जी, अनिकेत जी, अभी, वर्तिका, शंकर जी, सुजाता जी, मालती, विनीत, राधे, रामू काका और आरवी भी। आज पूजा में सब शामिल थे सिवाय अयांश के। पंडित जी भी आ गए जो पूजा स्थल पर बैठे पूजा की सामग्री देख रहे थे। बस थोड़ी देर में ही पूजा शुरू होने वाली थी, तभी सबके साथ खड़े दिनकर जी ने ऊपर की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा और मन ही मन खुद से बोले, सब है यहाँ, काश मेरा अंशु भी होता, कब तक नाराज रहेगा भगवान से। तभी अनिकेत जी की नजर उन पर पड़ी तो बाऊजी बोलते वो उनकी बाह पर हाथ रखते हैं। दिनकर जी अनिकेत जी की तरफ देखते हैं, कुछ बोलते हैं। अनिकेत जी ने आरवी की ओर इशारा कर दिया। आरवी की खातिर उदास मत होइए बाऊजी। हाँ, अयांश नहीं है पूजा में, पर हमारी आरवी तो है ना, मुस्कुराते हुए, एक ही बात है। दिनकर जी ने मुस्कुराते हुए आरवी की ओर देखा जो ठीक उनके सामने ही अभी वर्तिका, विनीत, मालती के साथ हंस रही थी। दिनकर जी ने आरवी की ओर देखते हाँ में सिर हिला दिया, सही कहा, एक ही बात है। तभी आरवी की नजर उन पर पड़ी, वो उनके पास चली आई। क्या हुआ दादू, डैड, सब ठीक है ना? अनिकेत जी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, सब ठीक है। दिनकर जी ने प्यार से आरवी के सिर पर हाथ रखा और बोले, सब ठीक है बेटा। आरवी मुस्कुरा दी और दिनकर जी के सीने से लग गई। तभी पंडित जी ने सबको पूजा के लिए आने को कहा और सब पूजा स्थल पर जाकर बैठ गए। पंडित जी के कहने पर अभी वर्तिका दोनों वर वधु वाले स्थान पर बैठे, आरवी भी वधु वाले स्थान पर बैठने को हुई तो पंडित जी बोल पड़े, बेटा आप अकेली बैठेंगी? आरवी एक पल खामोश सी हो गई, सब उसकी ओर देखने लगे, पर दूसरे ही पल मुस्कुराते बोली, पंडित जी बताया तो था आपको पूजा में सिर्फ मैं बैठूंगी, अपने पति की तरफ से भी पूजा मैं ही करूंगी, वो पूजा में नहीं आ सकते। तभी अयांश की आवाज आई, क्यों नहीं आ सकता? सबने अयांश की ओर देखा, आरवी की भौंई चढ़ गई, उसके क्या सबके होश उड़ गए, सब खड़े भी हो गए। आरवी जहां अयांश को सीढ़ियों से नीचे आते एक तक देख रही थी, वहीं सब कभी अयांश की ओर तो कभी एक दूसरे की ओर हैरानी से देख रहे थे। तभी विनीत दिनकर जी के पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, अयांश कितना प्यारा लग रहा है ना आरवी? दिनकर जी ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ मेरा अंशु बड़ा प्यारा लग रहा है।
सफेद पजामा कुर्ता, नंगे पैर, गले में आरवी के पापा की सोने की चेन और बाल दाढ़ी सब अच्छे से सेट किए हुए। हाय, क्या लग रहा था अयांश उस लुक में। आज से पहले उसे पजामा कुर्ता पहने किसी ने ना देखा था, पर सच में बहुत हैंडसम लग रहा था आज अयांश, कि देखने वाले बस देखे ही जा रहे थे। आरवी की तो पलकें भी नहीं झपक रही थीं, दिल धक धक करने लगा वो अलग। तभी अयांश आरवी के सामने आकर खड़ा हुआ, मेरे बिना ही पूजा करोगी वाइफी? आरवी उसे ऊपर से नीचे तक देखते बोली, आप ये यहाँ ऐसे इन कपड़ों में? आरवी की लड़खड़ाती जुबान देख अयांश मुस्कुरा दिया और जान गया कि आरवी को क्या किसी को भी उसने वहां होने पर यकीन नहीं आ रहा है। तभी अयांश आरवी को बाहों से पकड़ मुस्कुराते बोला, हैंडसम लग रहा हूं ना? पूजा के लिए ये कपड़े सही है ना? तुम्हारे साथ पूजा में बैठूंगा, पूजा करूंगा, अच्छा तो लगूंगा ना? तुम चाहती थी ना, सब एक नज़र सबकी ओर देख, चाहते थे ना मैं भी पूजा में आऊं, आ गया? ये सुनकर आरवी क्या सब समझ गए कि अयांश सच में पूजा में शामिल होने आ गया है। जहां सब मुस्कुरा उठे, वहीं आरवी का सिर अयांश की बात सुनकर चकरा ही गया। वो गिर पड़ी, पर वो नीचे गिरते उससे पहले अयांश ने उसे पकड़कर खुद के करीब खींच लिया